तब तक पढ़ते हैं जब तक हर एक के विचार थोड़े स्थिर ना हो जाए, और तब तक भजन शुरू करते हैं कि जब तक उस स्थिर विचार में सब लोग बिल्कुल लीन हो जाए। उसके बाद जो सिखाने वाला है वो तो हर वक्त अपने गुरु में लय होता, उसे दिक्कत नहीं है, वो हर वक्त गुरु में लय होता है। जब आपका बर्तन स्थिर हो गया तब फिर वो ये करता है कि अपने ख्याल की धार से सबको साफ करता है और ईश्वर का प्रेम भरता है, और जब बुजुर्गों की मौजूदगी को देखता है सबकी हो गई तो प्रार्थना करता है कि सब जैसे आपने हम पर दिया की वैसे ही तरह कहिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जब वो आशीर्वाद बंद मिल जाता है तभी आप हमें ताकि ये, और इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब भाऊ जी महाराज कहते थे बेटे ताऊ जी ने इतनी मेहनत तुम दोनों भाइयों के साथ की इतनी किसी के साथ नहीं की, लेकिन ये है मेरी सोबत में रह के सब चीज समझ जाओगे, और दूसरे ये है कि पहलवान कुछ दांव पे छोड़ देता है ताकि कभी कोई उस पर हमला करे तो वो बच जाए, तो वो दांव पे सीख लो। हर एक के स्वाभाविक ही होता है सब, कब शुरू करनी चाहिए कब खत्म करनी चाहिए, ये किसी की मोनोपोली नहीं है, और है तो फिर उससे लोगों को फायदा नहीं होगा। इसी तरह प्रसाद में भी प्रार्थना करता असर को, इसीलिए हिंदुओं में प्रसाद की प्रार्थना चली आई थी कि जो खाए वो उसको उसके विचार बदल जाए, ऐसा नहीं तो प्रसाद किसी चीज का हो। हम और आप क्या, उन्होंने कहा बाबूजी साहब के टाइम में रामायण पढ़ी जाती है, क्या सत्संग है जहाँ रामायण नहीं पढ़ी। उनका लालाजी महाराज साहब के टाइम में ये होता था ये नहीं होता था, उनका चाचा जी महाराज साहब के चने उन चीजों पे जो बेबुनियाद है उन पढ़े रहते हैं। समझिए भाई बाबूजी महाराज साहब ने लालाजी महाराज साहब की प्रेजेंस देखी कि साहब हलुआ बांट रहे ले आता, उनने प्रसाद मालुआ अब रोज हलुआ बांटता रहा। उन्होंने कहा जहाँ कोई सत्संग, अरे भाई नहीं हलुआ के इंतजाम हो जाए तो इसका मतलब प्रसाद ही नहीं बैठेगा। जिस चीज से आपको उस भाव को भर दीजिए उसमें कि किसी चीज में भी हो। भाव जी महाराज को इसलिए प्रिय था कि लाला जी महाराज सामने उनका पहला प्रसाद बरूप हलुआ, तो बेटे जब भी होता था हर एक से कहते थोड़ा सा बना लेना बाद बाकी जो सुविधा हो। समझे हमारे गुरुदेव ने लड्डू रखे थे, बाद में लोगों ने देखा ट्रांस पोर्ट में लोगों को दिक्कत होती है ये सब चीजें खराब हुई, तो उन्होंने कहा भाई आइडियल ये मिश्री रखो, ये मिश्री का प्रसाद ही इसीलिए शुरू हुआ मिश्री। तो हमें देखना चाहिए कि असल चीज क्या है, असल की नकल करनी चाहिए और फिर ऐसे ही करे कि असल में हो जाए। तो खासकर उन लोगों के लिए जिनके जिनमें तालीम का काम है कि ऐसा नहीं है जब तबीयत आई आंख बंद कर दी, जब तबीयत आई, जब गुरुदेव को हरेक को प्रसाद मिल जाए, हरेक को आशीर्वाद दे दें। और इसीलिए अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी तो उन्होंने कहा दौड़ाने सत्संग और वो हमेशा गुरु के इस पर देखते हैं, फिर आम नहीं के सब जिसी तरह पढ़ रहे पढ़ रहे समय आप बस नष्ट कर रहे हैं अपना। यही पोर्शन होता है जहां से ज्ञान का ट्रांसफर होता है, क्योंकि और इसी वजह से हिंदुओं में ये बिंदी यहाँ लगाई जाती है, क्योंकि जो शख्स वो होता है वो अपनी पत्नी की उसमें ट्रांसफर करता है, ये रेड रेखा जो मांग है इस पी पे सब सेंटर्स है ताकि उसे बराबर याद आती रहे, और वो अपनी पत्नी की सेवा को देख के ये रियलाइज करे कि साहब इसका ये रास्ता जो है मुझे तय करना है, यही जिम्मेदारी होती है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा, तब तक जरूरी नहीं है आधा घंटा एक भजन गा लिया दो भजन, अगर एक भजन में भी एक बराबर नहीं हुए तो बराबर गाते रहिए जब तक के सबके विचार, नहीं तो यही है गंदे पानी में डोल डालोगे तुम्हारा वो भी खत्म। और इसीलिए जब 100 लोग बैठते हैं तो किसी कहता कि मेरी ज्यादा तबीयत लगी, कोई कहता कम, तो जिसका चित्त एकाग्र हो गया वो हो गया, जिसका नहीं हुआ वो हो गया। अगर किसी ने मान लीजिए उसी वक्त उन्होंने चलो हम अपना ओम शांति का जाप कर ले, तो वो काम तो मन तो एक ही है, वो लगा हुआ है उसमें, तो आपको क्या फायदा होगा। जैसे आए थे वैसे ही आए हैं, जो जिस ख्याल से जो जाएगा वैसे ही उसका असर होगा। तो सबसे पहले गुरु का काम ये है, जिसके जुम्मे तालीम का है, कि वो सबके ख्याल को पहले एकाग्र कर ले। जब वो लेवल आ जाए तब फिर उस मालिक से प्रार्थना करें, जैसे आपने हम पर दिया की, इस बंदे पर दिया की, इन सब पर भी दिया की। और जब वो आशीर्वाद सबको प्राप्त हो ले, तब बस ये है कि कहीं वो हालत हट न जाए, फौरन वो कर देते, फिर अर्पण करते हैं। और प्रार्थना में सब पे जामे राहत भी यही है, सबका भला करो। तो समय समय की चीज थी कि जिस हिसाब से दूसरे संस्था में जाए, जहाँ जैसे वहाँ के नियम है उन्हें अपना फॉलो कर ले, किसी के उसमें दखल यही भाव जिन्हें आप लिखा था फतेहगढ़ जाएं, सलाम करना हमारा फर्ज है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था में जो मदद कर पाए, लेकिन दखल देना हमारा काम नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो भाई ये कोई ऐसी हिदायत नहीं थी, वर्बली कर दी थी। कल को लोग कहते सब आपसे कहे गए थे, जैसे गाजियाबादी में आपने देखा है, बाबूजी ने हर कमरे में तीन तीन फोटो के लिए लगाए थे, तीन किले, वो टिपिकल जैसे फोटो पहले होते थे, दो नीचे सपोर्ट किए, तो नया मॉडल चला है। तो एक मर्द से भाई साहब ने हमने कहा, तो एक साहब कह रहे थे हमसे तो नहीं कहा, अरे भाई ना तुम इस लायक थे जो तुमसे कहते और ना तुमने वो, जब बेसिकली उनने करे ना करे हम तो, इसीलिए उनने बजाय इसके उस आदेश को लिख के दिया कि हमारे यहाँ सत्संगी का फर्ज है कि हर एक शख्स साल में बेहतर ये भंडारे एक वक्त हमारे गुरुदेव के दरबार में जाके सलाम करें, लेकिन वहाँ की व्यवस्था में जो मदद कर पाए दखल ना दें, हमने वहाँ की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ना हो। जो भी होगा आपका दिमाग पॉइजन होगा, आप उससे आ जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि जब तक आपको ईश्वर ने तौफीक दी है, जब पहले रामायण हो, भजन हो, या जिस हिसाब से आप समझे, सबके चित्त एकाग्र हो सकते हैं, तो पहले चित्त को एकाग्र करिए। जब चित्त एकाग्र करेंगे तब फिर वो एक लेवल पे आ जाएंगे, तब फिर उनको उस मालिक से प्रार्थना करिए जैसे आपने हम पर दया की है। तब और इसीलिए बार बार कहते हैं, जब बार बार हर वक्त चित्त में आप अपने गुरुदेव को बैठा ले रहेंगे तो आँख बंद करने में आसानी होगी शुरू में, बाद में खुली आँख से भी आपको वो हर जगह दिखाई देगी। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि साहब कब, अक्सर पूछते हैं साहब एक घंटा होता था, आधा घंटा होता था, कभी कोई कहते साहब हमें 15 मिनट, नहीं बहुत देर खुली आँख वो बात करते रहते थे, वही आँख कभी नहीं बंद करते थे, तो बाकायदे वो करते थे। तो वो ये देखते थे कि हम किस ख्याल से आए हैं, तो अगर वो चित्त एकाग्र हो गया नहीं उठ के चले जाते, तो बड़े पहले बड़ा बुरा लगता था जो पुराने भाई हो, उनने कब आए किस गाड़ी से जाएंगे, तो हम लोग की दुनिया भी अकल थी, बड़ा बुरा लगता था भैया ये इतनी दूर से आए हैं लॉन्ग डिस्टेंस से, स्पेशली ज़्यादातर पहले ईस्टर्न साइड क्या है, तो ये लगता था इतनी दूर से आए हैं भाव जी ने किस रूह के पन से। अगर उसने ये कहा साहब आए हैं कल हमें जाना है, आज ही शाम की गाड़ी से सरकारी काम है, उठ के चले जाते थे। उनने कहा बेटा इनको जरा सा चाय नाश्ता करा देना, खाना खिला देना, और उसकी तरफ बिल्कुल रागब नहीं होते। जब कोई आया तो उसके सीन का नहीं, बाबू जी 2 दिन रुकेंगे आपके पास, तब उनने कहा कर बेटे जरा, जब वो आता था तो वो समझते नहीं ये ईश्वर के नाम के लिए आया, इसको अगर नहीं दिया तो हमारी ये गुस्ताखी है, तब हमारी गुस्ताखी है। तो खूब समझ कर लीजिए कि किस तरह से किस ख्याल का आदमी आया है, फिर उसके बाद उसको। और घर पर इसलिए कि आप अपने घर का वातावरण बनाने के लिए घर पर हर बहुत जिक्र करते रहिए बुजुर्गों का, ताकि अब जैसे भाई साहब ने बच्चों का समाधि पे माथा टेको पास हो जाओ, वो साहब इसीलिए जाते हैं, उन्हें एक लालच, शुरू में सबको यही सब दिक्कत होती है, जाते हैं। तो एक दिन पंकज के लड़के ने क्या तैयार नहीं था उनका, आज टीचर बीमार हो जाए, बाबा जी बस मैं बीमार हो जाए, इतफाक से वो बीमार हो गई, बड़ा खुश हुआ बाबा जी की बड़े दया हो गई। धीरे धीरे विश्वास होता जाता है, धीरे धीरे विश्वास होता जाता है, सुबह सुबह बच्चों को फोन आएंगे हमारे इम्तहान है देने, तो एक उनको विश्वास होता जाता है। जब वो ठीक हो जाता है वो समझते उसकी वो हो गया साफ। तो जब उनको विश्वास हो जाए भाई प्रार्थना ही तो करनी है, दूसरे से करनी है, कबूल हो गई तो ठीक है, ना कबूल हो गई उसके मालिक है। तो हमेशा ये ख्याल करिए पहले उसने किस ख्याल से वो आया है और फिर उसके बाद वो करिए कि साहब, अदरवाइज आप मेहनत भी करेंगे और रायगा जाएगी। अक्सर गुरुदेव कहते थे बड़े बड़ी मेहनत की लेकिन बिल्कुल रहेगा नहीं हमारे। तो ये समझ में नहीं आया मेहनत क्या की, ये बैठा रहता था, सब कुछ था, इन्हें इतनी सेवा की, और वो तब ही मालूम हुआ कि साहब इसमें फैक्ट क्या है। और यही बाबू जी कहते थे बेटे भाई साहब ने तुम दोनों के साथ बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये है कि खूब समझ लो और हमसे दम पे सीख लो। तो हंसी आती थी, उन्होंने कहा, हमने कहा पता नहीं, तो वो कहते थे नहीं पहलवान एक आध चीज छोड़ देता है ताकि कभी तुम उसे पटकने की कोशिश करो तो वो तुम्हें पटक दे। तो एक्चुअली यही है कि कब हमें, खासकर उन लोगों के लिए हम बता दिए जो लोग तालीम के हुए, जो सत्संग के हुए, निज आप अपना अभ्यास करें तो जो जाप आपको बताया गया उसी हिसाब से। जब आप अपना जाप, दोनों फर्क है, एक आप जाप करने के वक्त पे और सत्संग और भंडारी में, जाप जाप करते हैं निज कृपा होती है, कभी कभी गुरु की कृपा होती है, सब पे निज कृपा ज्यादा होती है, गुरु की कृपा कम होती है, कभी कभी हो जाती है, इसलिए अभ्यासी घबराए ना। जब सत्संग होता है तो निज कृपा के साथ साथ गुरु कृपा हमेशा होती है, उसी ने तुलसीदास जी ने लिखा कि जरूरी है सत्संग, बिन सत्संग विवेक नहीं होगी, वो बगैर राम कृपा की नहीं मिलता। तीसरी चीज होती है भंडारा, भंडारे में सब बुजुर्गों की कृपा, सब बुजुर्गों की कृपा होती है। देखिए पहले जब बाबूजी सन 70 में पहली मरते गए तो आप सबको किसी को भी नहीं ले गए पुराने सत्संगी भाइयों को मौलवी साहब के यहाँ, हम भाई साहब हो गए तो ऐसा नहीं था इसलिए ले गए वो लड़के। आप लोगों ने चर्चा नहीं सुनी थी, हो सकता था मुसलमान की वजह से या किसी कारण आपको उतना विश्वास नहीं था, कच्ची कच्ची कब्रें थी। 5 मिनट बाबूजी को पहचानने में लगे कि बेटे ये ईस्ट है ये वेस्ट है, उन्होंने कहा ये कब्र वो है। और सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों को जो बन गई है इसलिए नाम लिख देगा ये भी नहीं कह सकते थे इनमें कौन सी वो थी। जैसे मौलवी अहमद अली साहब की आपको बताएं, पहली कब्र जो है जो सबसे पहली है तो वो उनकी है, बीच वाली उनके लड़के की है, तीसरी वाली किसी की नहीं है। वो जब वो आदमी आया था जो फर्जी ही, तो उसने कहा ये हमारे सामने भैया उनकी बीवी की तो वहाँ है, तो उसने कहा देखा इन्हें मालूम है, उनकी बीवी की इंतकाल पहले हो गया था, तो हमने कहा उनका तो वो हो गया था, तो खाली उनके लड़के उनकी थी, वो तीसरी उसने अपनी ऐड कर दी। ये सब कच्ची थी। अब देखिए वो तो आए नहीं, किसी मनुष्य से ईश्वर काम लेता है, बाद में जिसने किया उनको उन्होंने फायदा किया, धीरे धीरे करते करते ये सब हो गए, आज 10 लोग उनको याद करने वाले हो गए। तो इसलिए नहीं ले जाते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग को चाहते थे, हम लोग को दूसरों को नहीं चाहते थे, पहले वो चाहते थे विश्वास हो जाए कि हम जाएंगे, फिर तड़प उठे इनके हृदय में, तब उनने कहा। फिर अपनी डायरी में उनने लिखा कि 84 में जब उनने मेरे सब आदमियों को कबूल कर लिया, पर उन्होंने कहा बेटे जरूर चले जाओ। तो ये क्या था, ये पीरियड था जो कि और लोगों को विश्वास करने में, जब घर पे आप रोज जिक्र करते रहेंगे तो बच्चे पहले से उनके माइंड में होगा अच्छा साहब हम ये दादा गुरु के यहाँ चल रहे हैं, ये उसके कर रहे हैं। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, थ्योरी कुछ नहीं है। कौन कहाँ गया, ताऊ जी कभी नहीं ले गए, एक मरता हमने पूछा उन्हें सदरों के जो विश्वास ही नहीं तो मैं ले जा क्या करूँ, अपना टाइम खराब करूंगा। खुद अब्दुल गनी साहब के पास गए, जब अब्दुल गनी साहब के पास गए हैं उनकी एक चिट्ठी आई थी, तो हम भाई साहब वो कि हम लोग की उम्र बहुत कम थी उसका, और उनके हर लड़के और कोई भी नहीं साथ था, बाबू जी साथ थे, 5 आदमी थे। भाई अगर उनको दूसरों को विश्वास होता, और जब लौट के आए तो बोले नहा हमारी कोई बेकार लाए बैठे। तो उनको जब तक हमें आपको विश्वास नहीं होगा तब तक हमें फायदा। तो हमेशा वो गुरु अपनी बदनामी सह सकता है लेकिन अपने बुजुर्गों की बदनामी नहीं करता। और यही अल्टीमेटली बाबू जी ने पढ़ा दे, इसीलिए बार बार रिपीट करते हैं कि चारों चीजें बाबू जी की याद रखिए, उन्हें बेटे थिंक गुड डू गुड बी गुड, अच्छा सोचो अच्छा करो अच्छा बन जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। लग लिपट के अपना काम बना लो, फिजूल की बातें छोड़ो, किसी जीवन में किसी के हो जाओ, किसी को अपना बना लो, कुछ ना कर पाओ तो अपने गुरुओं को, कोई ऐसा काम मत करो दुनिया का जिससे तुम्हारे बुजुर्गों की बदनामी। कभी वो शख्स इस रास्ते का वो ही नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन में राक्षस भी एक ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है, लेकिन अगर करना है तो उनका सहारा लेके करिए, आपके साथ हाँ हमारे बुजुर्ग ये हैं और उनका आदर करिए, तो ईश्वर चाहेगा सबको उतना ही फायदा होगा।